धरती का बोझ है लेकिन ना तो गिरती है ना डोलती है, बिल्कुल बैलेंस बराबर है। वो अष्ट आवरण जैसे मानो 40 केजी का लोखंड अभी ले आओ, यहां सेंटर में लटकाओ, नीचे भी खींचने वाला मिकनातीस, ऊपर भी, इधर भी, इधर भी लगा दो, फिर उसको छोड़ो कहां जाएगा, कहीं नहीं हिल सकता, चारों ओर से खिंचावट पड़ेगी। इस तरह से धरती के पूरे गोलाकार पाताल से 14 लोक कुछ चारों ओर से अष्ट आवरण लेके खड़े हुए। इतना भी वर्णन किसी ग्रंथ में नहीं था, ध्यान देना। और इसी के लिए दुनिया इंतजार में थी। ये है सारा क्षर का ब्रह्मांड। क्षर का अर्थ क्या होता है, जिसका महाप्रलय में नाश हो। तीन प्रकार की, दो प्रकार की ये प्रलय हुई और तीसरी प्रकार की प्रलय प्राकृत प्रलय होती है। एक वैकुंठ जिसमें तीनों पुरियां हैं, वैकुंठ की पुरी के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों की पुरियां ये रह जाती हैं। नीचे के 13 के 13 लोग जो है प्राकृत प्रलय में लय हो जाते हैं और वैकुंठ रह जाता है। वैकुंठ तो केवल तब लय में आता है जब सृष्टि सारी का महाप्रलय होता है और उसमें अरबों साल बीतते हैं। इसलिए इसको वैकुंठ भी कहा कि जहां सुधी संसार है। इसलिए कल महाभारत का वो श्लोक भी बताया था जो भीष्म पितामह ने उस वैकुंठ के नाथ महाविष्णु आदि नारायण के स्वरूप श्री कृष्ण की पहचान कराई कि हे अर्जुन, जिसको तुम देवकी नंदन कृष्ण फुई मामा के हिसाब नाते से बोलते हो, दे के नाते से छोड़ करके इसके अंदर बैठी जो शक्ति है उसकी औलखान करो, तो ये आदि नारायण स्वयं भगवान सृष्टि के नाथ खड़े। और इसको एको अपि, एक बार ही, ज्यादा भी नहीं, एको अपि कृष्ण सकृतो प्रणामा, इस आदि नारायण 16 कला संपूर्ण भगवान को जो पहचान कर और इसकी विधि के अनुसार कि इनको प्रणाम कैसे करना चाहिए, इनकी पद्धति क्या है, तो वो प्राणी प्रसन्न इनको कर लेता है तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और फिर उसका बदला क्या मिलता है, 10 अश्वमेव यज्ञ रचना और उनको एक को प्रणाम करना, एक बार इतना फल होता है। अब किसी के समझ में कल आया होगा तभी तो। फिर क्या होता है कि यदि वैसे कोई संसार में 10 अश्वमेव यज्ञ कर ले वैसे ही, तो उसको उसका फल भोगने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो उस कृष्ण को, वैकुंठ के नाथ को प्रसन्न कर लेता है तो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। कब तक, जब तक ये ब्रह्मांड खड़ा हो, इसलिए उसका नाम वैकुंठ है। जब तक महाप्रलय नहीं होता, फिर जब महाप्रलय आती है तो श्रीमद् भागवत भाई 12वां स्कंद और 2रा अध्याय जाके वाचो, 14 लोक, 5 तत्व, तीन गुण सबके सबका प्रलय हो जाता है। तो अब जिसको ग्रंथ के प्रमाण पर कोई शंका हो वो पहले आराम से शांति से जाके ग्रंथों को देखे। अब इसके अंदर वैकुंठ तो वो एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। प्राकृत प्रलय भी कभी होती ही नहीं, केवल नित्य प्रलय तो प्रायः होती रहती है और नियमित प्रलय होती है। प्राकृत प्रलय भी बहुत कहीं करोड़ों सालों के बाद होती है, और आज सृष्टि को बने कितने साल हो गए लेकिन वैकुंठ का प्रलय तो नहीं हुआ। इसलिए लोग उसके शब्द का अर्थ निकालते हैं, कुंठ एटले समाप्त हो जाने वाला और वैकुंठ एटले जिसका समाप्ति ना हो। तो अर्थ निकालने से क्या उसका प्रलय नहीं होगा क्या? शब्दार्थ से उसका वे उन्हें पूछा था वैकुंठ का क्या अर्थ होता है, तो गुस्से से नहीं प्यार से पूछो। संस्कृत के ग्रंथ खोलो, गुरुओं की शरण में जाके पूछो। अर्थ तो यही है, अर्थ तो यही है कि उसका कुंठ नहीं होता, पर जब महाप्रलय होती है तो सबका ही कुंठ हो जाता है, सब समाप्ति हो जाती है। अब यदि हम अर्थों के हिसाब से चलें तो साथियों आओ, आज हम हजारों की संख्या में बैठे हैं, कल भी देखा सुना, रोज संतों से महात्माओं से अपने पूज्यवर गुरुओं से ये सुनते हैं और पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं। परमात्मा केवल उसी को कहना चाहिए या कहते हैं जो ना जन्मता है और ना मरता है? तो आज बोलो क्या हमने उस परमात्मा को ढूंढ लिया है कि जो जन्मता नहीं और मरता नहीं? क्योंकि रामायण में राम भगवान ने तो कहा मेरे जैसे करोड़ों ब्रह्मांड आज भी खड़े हुए हैं और हर ब्रह्मांड में त्रिदेवा हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, वैकुंठ है, 14-14 लोक हैं। केवल यही दुनिया नहीं है, ऐसे ऐसे और भी करोड़ों दुनिया बनी हुई है। देवी भागवत खोलो, जाके उसमें पढ़ो। और उन सब को बनाने वाला जो है उसको कहते हैं कूटस्थो अक्षरा उच्चते। उस अक्षर ब्रह्म के एक पलक मात्र के इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड और एक एक ब्रह्मांड के अंदर त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश और 33-33 करोड़ देवते और ये जो कुछ अपन यहां देख रहे हैं उन ब्रह्मांडों के अंदर भी हो रहा है। और उन सबको जो बनाने वाला है वो एक अक्षर ब्रह्म है। और वो कौन है? वह उस परब्रह्म जिसको हकीकत में उत्तम पुरुष परमात्मा कहते हैं, वो अक्षर ब्रह्म भी पूर्ण स्वरूप परमात्मा का नहीं है, केवल सत्य स्वरूप है। जिसके लिए अब वेदों का प्रमाण ले लो। अब भाई जिसको ना देवी भागवत पे विश्वास हो और ना और ग्रंथों पे विश्वास हो, केवल फक्त एक ही ग्रंथ पे विश्वास हो और वो रूढ़ता के साथ चलता हो, तो उसके प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते कि केवल उसी की किताब सच्ची है और बाकी सारे बद्धा ग्रंथ गलत हैं। तो वो भाई क्षमा करे, फिर वो कोई ईंट को भी भगवान माने तो हम उसको मना थोड़ा करेंगे। सोचने की बात यह है। अब आइए जरा वेदों को देखें। हर वक्त हमारे जितने भी संत जन आके वेदों के बैठेंगे तो सबसे पहले ये श्लोक बोलते हैं, पूर्णमदा पूर्णमदिम। दो ही शब्दों का अर्थ अगर समझ जाते तो हमारे सारे संशय मिट जाते कि वो जो पार ब्रह्म है वो ऐसा एक पूर्ण है पूर्णमदा, उसमें से पूरे का पूरा एक निकाल लिया पूर्णमदिम। एक में से एक गया क्या रहा भाई? बहुत मुश्किल सवाल है, कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी क्या? एक मात ही एक गए हो? सारे चुप हैं, बड़े बड़े वकील भी, ये गड़बड़ हो जाएगी। हमने शून्य कहा तो महाराज पकड़ लेंगे। बोलो तो सही, एक मात ही एक गए हो, कोई ना रहे हो। लेकिन वेद कहता है एक में से एक गया फिर भी एक का एक रहा। तो लो अपनी अकल को लगाओ, क्या करोगे? अब कह दो जी वेद गलत कहते हैं, क्योंकि अपनी अकल जो कहती है वेद उसे उल्टा बखान कर रहे हैं। वेद उल्टा नहीं बखान कर रहे, हमारे पास उतनी अकल नहीं है कि वेद के उन मंत्रों को समझें। गलत नहीं होते, हमारी बुद्धि छोटी है, नानी है, उसी हिसाब से हमारा नापतोल भी होता है। पूर्णमदा पूर्णमदिम, उस एक पूर्ण के पास इतनी पूर्ण शक्ति है कि वो सत भी है, चिद भी है और आनंद भी है। इसलिए ही तो वो सच्चिदा नंद। अब सोचने की बात है जी, उस एक में से एक क्यों निकाला? पूरा ही रहने देते? वो ऐसा एक है कि सत्ता का पूर्ण स्वरूप उसमें से निकाला, वो है अक्षर ब्रह्म। लेकिन फिर भी वो सत चिद आनंद का आनंद है, ये नहीं कि उसके अंदर सत्ता नहीं। अब आओ यहां की अकल से नहीं, वो अकल ले आए प्राणनाथ जी यहां, अब उनकी उस ज्ञान से समझो। कोई भाई मेरा यहां एडवोकेट है, मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, डीएम है, जब वो आपस में बैठा है ऑफिस में, जिला अधिकारी होए, क्या कोई नाना डीकरा या कोई गलत बुद्धि वाला आदमी उसके रूम में जा सकता है ऑफिस में? बाहर ही पुलिस वाले अंगरक्षक खड़े होते हैं और कोई सी को भी अंदर जाने की, बोलो बोलो, इजाजत नहीं। हम जाना भी चाहें हंटर लेके खड़ा है और अंदर नहीं जा सकते। और अंदर जिस तख्त पर वो बैठा है वहां पर पहुंच नहीं सकते। ध्यान दो, वो उसके कौन सा स्वरूप है? सत्ता का स्वरूप है, उसके पावर के दरबार का स्वरूप है कि वो कौन बैठा है। हमारे और आप जैसा ही आदमी होता है, हम उसके निकट नहीं जा सकते और उसकी टेबल पर हाथ नहीं लगा सकते। कापड़ तो उसका छुआ नहीं और पीछे से धड़क गोली आई नहीं और हमारे को ठंडा कर दिया जाए। अब आओ वही अफसर ऑफिस से उठ के घर आता है, अभी गाड़ी बाहर खड़ी है, एक दो तीन वर्ष का बालक मट्टी में खेल रहा था और पापा पापा कह के आता है और उसके सूट के साथ चिपट जाता है, उसको गोली मार दी जाएगी? अरे बोलो तो खरा, जो उसका दिख रहा है वो तो देखता है कौन आ गया, उसका कौन आया है, उसका डिप्टी कलेक्टर नहीं आया है, उसको ता पापा आया। जब ये बातें आप समझ जाओगे तो पार ब्रह्म का सत अंग क्या है, आनंद अंग क्या है, और स्वयं चिदगन होते हुए भी सत चिद आनंद क्या है। अब आइए, अब वो कलेक्टर साहब अंदर चले गए, बच्चे को उठा लिया, तो मां को बुरा लग रहा है। एक मारती है, क्यों, क्या बात है, एक कपड़े सारे, अरे क्या हो गया कपड़े का, वो कलेक्टर, अरे क्या हो गया, बच्चा है मिला है, कोई बात नहीं, क्या हुआ, उसके लिए कुछ नहीं। अब वो घर बैठा है, सारे दफ्तर को अपने साथ उठा के लाया है कि दफ्तर को छोड़ के आया है, बोलो भाई बोलो, छोड़ के आया है, पर उसके दिल में सारा दफ्तर है कि नहीं है, नहीं समझे, पूरा दफ्तर है कि अधूरा है, और एक पूरा उसका वहां भी है, एक पूरा उसका उसके दिल में है, इसलिए वो पूरे का पूरा है। पर अंतर क्या है कि जहां दफ्तर है वहां उसकी सत्ता की पावर है, जहां सत्ता है वहां आनंद नहीं है, और जहां आनंद है वहां सत्ता हो नहीं सकती। डंडे से हुकूमत से मोहब्बत और प्यार नहीं हो सकता। इसलिए जो दिव्य ब्रह्मपुर धाम है परम धाम का, वहां लीला आनंद ही आनंद की है, वहां सत्ता हुकूमत की लीला हो नहीं सकती। और अक्षर ब्रह्म जो है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अक्षर एंड अक्षाति। फर्क क्या है, स्वरूप एक और लीला दो है। वो जो सतांग अक्षर ब्रह्म है, जिसको कूटस्थ ग्रंथों में लिखा है, वो पूर्ण ब्रह्म की सत्ता का स्वरूप कूटस्थ है, अविनाशी है, पर उसको अधिकार क्या है कि दुनिया करोड़ों बनानी और बना के मिटा, बस, किसी को भी क्षमा करना, पापों से निकालने का अधिकार उसको नहीं है, क्योंकि सत्ता का मालिक है। ये जो कृपा करनी, उसके नाम नहीं लिखा हुआ, अति कृपालु अति दयालु वो नहीं है, अति कृपालु और अति दयालु जो है वो तो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए अब अक्षर ब्रह्म ने जितनी भी दुनिया बना रखी है, उसके अंदर उनके मन की शक्ति के स्वरूप बैठे हैं, जिसको हम कहते हैं आदि नारायण। अब आदि नारायण जब इधर आते हैं नींद के स्वप्न के अंदर, तो सब शास्त्रों को उठा के देखो, जैसे हम रात को सोते हैं नड़ियाद में, सावधान हो जाना जरा, ये ब्रह्मांड कैसे बनता है, फिर जाके जरा अपने धर्म ग्रंथों में लिखना, देखना कि क्या लिखा है कि संसार कैसे बनता है। अगर लिखा भी है तो हमें समझ नहीं आती, क्यों, क्योंकि लिखा है कि ये कब समझ आएगी, जब कलयुग में पूर्ण ब्रह्म इधर आएंगे तो वो अपने साथ वो समझ भी लेकर के आएंगे जो दुनिया को नहीं दे रखी। वो कौन सी है, पराशक्ति, उठाओ गीता, उठाओ वेद, उठाओ रामायण, तब जाके समझ आए कि अर्जुन दो शक्तियां होती हैं, एक परा और एक अपरा। अब कहोगे जी ये परा और अपरा क्या होता है, आ जाओ उसको भी समझाते हैं। अब हम जागृत हैं, ध्यान दो, परा और अपरा को समझो। अब हम जाग रहे हैं, होश में हैं, तो हमारे पास जो बुद्धि है, ध्यान दो, ये बुद्धि हमारे तन से निकल तो नहीं जाती। जब हम सोते हैं तो ये बुद्धि काम करती है या कोई और होती है, बोलो? जब हम सपना देखते हैं यही बुद्धि काम करती है या कोई और होती है? वो सपने वाली बुद्धि और होती है। क्यों? जब हम सो जाते हैं ये ब्रह्म ज्ञान की भूमिका शुरू हो रही है। जब हम सो जाते हैं तो सारा शरीर शांत होता है, एक मन शांत नहीं होता। मन 24 कलाक काम करता रहता है, बुद्धि बिल्कुल शांत होती, चित्त शांत होता है। ध्यान दो, कुछ काम कार्य अपने ऐसे होते हैं कि जो अपन आज श्याम सुधी नहीं कर सके, पर हृदय में रह जाते हैं और उसी की चिंता लगी रह जाती है। सपोज दाखला आप पूछो, तो मैं दृष्टांत एग्जाम्पल देता हूं। हूं एक वडिल मिल ओनर, मैं एक बहुत बड़ा मिल का मालिक हूं। मेरे मिल का कुछ ऐसा पार्ट पुर्जा बॉयलर फट गया कि जो इधर नहीं मिलता है। बॉम्बे काल लगाया, बोलते हां सेठ जी 20 लाख का चेक ले आओ मल से, तमें यहां आई जाओ बॉम्बे मां, पसंद करी ना खो, ऑर्डर दे देना, माल पहुंच जाएगा। ठीक, टिकट रिजर्वेशन हो गई, चेकबुक भी डाल ली, कपड़े भी तैयार हो गए। उधर से अहमदाबाद में मेरी सिस्टर रहती है, उसका कॉल आ जाता है कि भाई साहब आज नहीं कल चलेंगे, मेरी भी टिकट करवाओ पर कल चलेंगे। अब भाई है, बोल सकता नहीं, बड़ा दिल में गुस्सा भी आता है कि भाई मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। अब बहन ने बीच में क्या रखड़ा कर दिया, अब बहन को बोल नहीं सकता कि भाई उधर क्या कह रहे, अच्छा बहन भले। अब टेलीफोन कर दिया बंद और इधर लगा गाली निकालने, इस बहन ने कमबख्त ने हमारी मुसीबत डाल रखी, हमारा इतना धंधा था किसको सुना रहा है। बहन तो वहां बैठी है, टेलीफोन बंद कर दिया है, सुना किसको रखा है। वो बात मन की मन में रह गई। अब ध्यान देना, टिकट नेक्स्ट डे की बुक हो गई, रात को सोया, चिंता किसकी लगी रही, बोलो तो खरा। बॉम्बे जाना था, चिंता तो वही लगी रही थी, आज मैंने जाना था, ये करना था, वो करना था, चिंता में सो गए कहां, बोलो बोलो तो खरा भाई। न्यारद में के आनंद में चले गए, नडियाद में सो गए। अब जब गहरी नींद चली, हमारा मन अंदर से निकलता है, अटैची तैयार थी, बेडिंग तैयार थी, रिक्शा वाले को बुला लेता है, रिक्शा आ जाती है। आपको तो रिक्शा खरीदने में दिन लगेंगे, वो सेकंड में ले आता है, सेकंड में उसने एक डुप्लीकेट नडियाद बना लिया पट्टे में। तुमने सारी उम्र नहीं बना सके, जब सपना चालू होता है नड़ियाल सामने आ जाता है कि नहीं, बोलो भाई, रक्षा आ जाती है। अब ये बताओ अंदर जाके सामान कौन उठाता है, तुम तो सो रहे हो। मन ने जो हमारा एक नया स्वरूप बनाया वो उठता है, अटैची भी उठाता है, बेडिंग भी उठाता है, रक्षा में रखता है, अटैची में से पर्स निकालता है, रिजर्वेशन वाली टिकट निकालता है, नड़ियाद स्टेशन पे चला जाता है, गाड़ी भी आ गई, स्टेशन भी बन गए। गवर्नमेंट हजारों वर्ष प्लान बनाती रहती है, स्कीमें बनाती रहती है, उसने एक सेकंड के अंदर तैयार, गाड़ी आ गई, हाँ टिकट भी देखता है, F2 में मेरा टिकट नंबर 6 है, उसी को देख के बैठ जाता है, बॉम्बे भी पहुंच जाता है, लो पहुंच भी गया, और लाखों वहां पर आदमी भी, सामान भी खरीद रहा है, सपने वाले सब आदमियों से बात भी कर रहा है। उससे जो नड़ियाद में सो रहा है भाई, उससे नहीं, क्योंकि नड़ियाद वाले को पता है मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन सपने में वो है, जागृत में वो भी नहीं है। आओ, जो बॉम्बे में आपका स्वरूप चला गया था, यदि उससे पूछा जाए तुम्हारा असल ठिकाना कहां पर है, सोच के बताना, क्या सपने वाले को पता है कि नड़ियाद में मैं सो रहा हूं। अब भाई ये जो तुम बैठे हो ये सपने वाले हो, जितनी देर तक हम सपना देखते रहते हैं, सपना सच्चा होता है कि झूठा, बोलो। जब तक सपना देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा जागते हुए, जागने के बाद होश आती है ना भाई, सपना तो झूठ होता है, लेकिन ज्ञान सुधी अपन सपने के अंदर होते हैं, सपना सच लगता है कि झूठा, सत लगता है, लेकिन हकीकत में वो सत होता नहीं है। तो सपने में जिनकी उत्पत्ति होती है, ध्यान देना, भले वो सपने वाला है या सपने में जो कुछ देख रहा है, वो जब उठा दिया जाएगा तो सारा सपना खत्म कर जाएगा। बोलो बोलो भाई, जब हम उड़ जाते हैं तो सपना सारा टूट जाता है कि नहीं, और जितने आदमी हम देख रहे थे वो सारे कहां चले गए, कहां चले गए? अब ये विचार करो, कल वो भाई वीरू भाई जी थे, आज उनकी शक्ल देख रहा था, दिखे तो नहीं, शायद आजू बाजू में कहीं बैठे हो तो मैं नहीं जानता, वो सपने का वीरू भाई है। मेरे साथियों, ये ब्रह्मवाणी है, ये ब्रह्म ज्ञान है, जहां धर्मों की लड़ाई का चक्कर नहीं, किसी के धर्म की निंदा करने का मतलब क्या है, या किसी धर्म ग्रंथ को खोटा कहने वाला समय लेना, इसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं, इसके पास झूठी देह का ज्ञान है, जो अपने को, प्राय को, उसको, आ तारा धर्म, आ मारा धर्म, आ मारो ग्रंथ, आ तारो ग्रंथ। साथियों, यही हमारी भूल है, सब धर्म इसकी साक्षी देते हैं कि जेने परमात्मा कहवा, जो हकीकत में परमात्मा है वो सबका एक, उस एक को जिस दिन हम पहचान लेंगे, तब इस सपने के अंदर रहते हुए भी हमें उस सत्य की पहचान हो जाए। यदि सपने वाले को ही हमने परमात्मा मान रखा है तो बोलो सपना टूटेगा तो वो मिटेगा कि नहीं मिटेगा। यही शास्त्र कहते हैं कि महापरले के अंदर जिसकी यहां उत्पत्ति होती है उसका महापरले में बोलो भाई लय हो जाएगा। अब वो बात राम भगवान कह रहे हैं कि उपजहे जासो अंशते नाना शंभु विरंचि विष्णु भगवान उपजहे जासो अंशते नाना। वो परमात्मा है। इसका मतलब है हमारे मतलब वाली जो बात रामायण में है वो सच्ची है और जो हमारी बुद्धि में बात नहीं आती तो बताने वाले पर करो है आपने कौन सा स्वर्ग बताया। ऐसे तो तुलसीदास जी महाराज बड़े महान पुरुष हुए, उन्होंने रामायण लिखी। पहली चुपाई यदि किसी ने देखी हो तो उसको ध्यान होगी, ना हो तो आज सुन के जाओ। पूजन करते समय कलम उठाते समय क्या लिख रहे हैं। सिया